أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نقطہ مجھے دعائے افتتاح میں نظر آیا، اوکے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھے مفاتی کوئی مجھے اٹھا کے دے دے، اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں، نیچے والی، نیچے جو موڑ، سب سے موڑی کتاب ہے مفاتی، میں لینا بھول گیا، بہت آرام سے
دعائے
بات تو اچھی کی آپ نے. دعائے افتتاح کے اندر بہت سارے نکات ہیں. ایک نقطہ تو ہم نے بات کی تھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ایک اور نقطہ جو دعائے افتتاح کے بالکل آخری پیج میں ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہم خدایا ما عرفتنا من الحق، وہ جو چیز جو تو نے، اے خدایا، وہ چیز جو تو نے ہمیں حق کی پہچنوائی ہے، اوکے، شناسائی کر دی ہے اور ہم حق کا وہ حصہ جانتے ہیں، فحملنا ہو، اے خدایا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کو جو ہم نے سیکھا ہے اب تک، اس کو ہم اپنے دوش پر لے لیں، اس کو ہم اپنے دوش پر لے لیں، یعنی دوش پر لے لیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور وہ حق جو ہم نے سیکھا ہے جب دوش پر آتا ہے نا، جب دیکھیں انسان کے دوش کے اوپر کوئی چیز آتی نہیں، یعنی وہ انسان اب ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، رسپانسبل انسان بن جاتا ہے. یعنی میں نے اور آپ نے جو بھی اب تک مثلاً ان 10 سیشنز میں سیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، انسان شناسی کے حوالے سے، یہ کیا ہے؟ حق ہے نا، حق ہے، نہیں باطل ہے، حق ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ حق ہمارے خدایا ہمارے دوش پر ڈال تاکہ ہم ذمہ دار بن جائیں اور اس حق کو ادا کریں. کیسے ادا کریں اس حق کو؟ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اب اس کے بعد، اب یہ کافی نہیں، آگے کیا امام فرما رہے ہیں، وما قصرنا عنہ، اور حق کے ان حصوں کی طرف جس کی نسبت ہم نے کوتاہی کی ہے، کوتاہی کی ہے اور ہم نے نہیں سیکھا ہے، فبلغنا ہو، وہ ہم تک پہنچا دیں. کتنا خوبصورت ہے نا، صحیح ہے، جو حق ہم نے اب تک پہچانا ہے وہ ہمارے دوش پر ڈال تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، ذمہ دارانہ، اور جو اور جس حق کے حصے کی طرف ہم نے کوتاہی کی ہے، فبلغنا ہو، وہ ہم تک پہنچا دیں. یعنی جو دین کا پیغام ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے، اے خدا، وہ ہم تک پہنچا دیں، تاکہ اس کے بعد کیا ہوگا، پہنچانے کے بعد ختم نہیں، اب وہ جب پہنچے گا نا، وہ بھی پھر ہمارے دوش پر ڈال. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. پر اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ، نتیجہ کیا ہے؟ دین کا سیکھنا ہر انسان کے لیے واجب ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. طلب علم فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر، نہ فقط مسلم، نہ فقط برادران کے لیے، بلکہ خواہران کے لیے بھی واجب ہے. اب وہ خواہران چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں، خانہ دار ہوں، چاہے وہ کوئی اور ان کا شغل ہو، اب وہ مرد حضرات جو پڑھائی کر رہے ہوں، چاہے وہ جاب پر جا رہے ہوں، چاہے وہ دانشگاہ جا رہے ہوں، کہیں بھی جو بھی ان کا شغل ہے، بلاخر جو بھی ان کا پروفیشن ہے، دین سیکھنا سب کے لیے واجب ہے. اور یہ دعا افتتاح سے بھی آپ کے لیے ایک اچھی دلیل مل گئی.
حد تک سیکھنا چاہیے
جی،
یعنی کس حد تک؟ ابھی جو
کس حد تک، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک. اب آپ مثلا ایک انسان ڈاکٹر ہے، ضروری نہیں کہ وہ مثلا تمام علوم دینی سیکھے، نہیں،
ہاں ایک حد تک،
ایک حد تک، اس کی حد تک، ہر جو اس کی ظرفیت ہے اور جو اس کے پاس ٹائم ہے، بلا کر اس کا اصل پروفیشن کیا ہے، ڈاکٹری کرنا ہے، لوگ مریضوں کو شفا دینا ہے. اب اس کی ظاہر سی بات ہے، جس کو مریضوں کو شفا دینا ہے، روزانہ دو تین آپریشن کرنے ہاسپٹل کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن उसको, जब वो फैमिली के लिए टाइम निकाल सकता है, अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल सकता है, अपने बीवी बच्चों के लिए के साथ मतलब गेम्स खेल सकता है, फलां कर सकता है, तो वो खाने पीने के लिए जब टाइम निकाल सकता है, तो वो एक घंटा कम से कम एक घंटा दिन के लिए टाइम निकाल सकता है।
एक सवाल, अगर जो मतलब वो डॉक्टर से अपनी हद तक गिरा, यानी डॉक्टर से आगे नहीं भरा, तो फिर ये गुनाह हिसाब होगा?
गुनाह हिसाब नहीं होगा, लेकिन उसने कोताही की है। दुआ में क्या आया? कोताही है ना। खुदा, जो हमने कोताही की है दीन सीखने में, वो हम तक तू पहुंचा दे, यानी वो दीन हम तक पहुंचा दे, बस हमें कोताही
ये गुनाह
नहीं करनी।
हिसाब नहीं होगा?
गुनाह नहीं है, लेकिन बिलाखिर उसने अपना नुकसान किया है वजूदी एतबार से।
अच्छा,
जब वो जाएगा कयामत में, उसको पता चलेगा, ओहो ये हकीकत थी, खुदा तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तो खुदा क्या कहेगा? हमने तुझे 60 साल 70 साल की फुर्सत नहीं दी जिंदगी की, क्यों तूने इस्तेमाल नहीं किया? तूने क्यों तूने मसलन रोजाना 1 घंटा 2 घंटे टीवी पे लगा दिए तूने? ऐसा ही है ना, कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है, क्या करते हैं 10 10 घंटे फुटबॉल और क्रिकेट के पीछे लगा देते हैं, फिर बहाने करते हैं कि यार हमने हमें दीन सीखने का टाइम नहीं मिला। ओके, इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दे कि हम जिस जिस अपने अपने मर्तबे के लिहाज से दीन को सीखने, समझने, अमल करने और उसको फ़रोग देने की हमें खुदा तौफीक अता फरमाए। हम बात कर रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से और उनकी ज़िंदगी में हम सैर कर रहे थे हम इससे पहले कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा, इन दोनों हस्तियों का किस्सा जन्नत में देखें। हम इन दोनों हस्तियों से इजाज़त लेते हैं और इनसे दुआ की तलब करते हैं कि वो हमारे लिए हमारे हक़ में दुआ फरमाएं, ना फ़कत हमारे हक़ में, उन सब लोगों के हक़ में जो इन इन सेशंस को सुन रहे हैं, ताकि हम इंसान शनासी के मरहले में कामयाब हो सकें। हज़रत आदम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा की जन्नत के दुखूल के हवाले से जो आयत कुरान करीम में आई है, वो सूरह बकरा की आया नंबर 35 है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत याद है किसी को? 3 जुज़ तो कम अज़ कम हिफ्ज़ हैं आप दोनों को, कम अज़ कम सही है, जिसको भी हिफ्ज़ है बिलाखिर वो तो बता सकता है। सूरह बकरा आयत नंबर 35, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुलना या आदमु उस्कुन अंता वज़ौजुका, कहाँ पर? अल-जन्ना, कहाँ पर? उस्कुन का क्या मतलब है? सुकूनत इख्तियार करो, मस्कन इख्तियार करो, हाँ साकिन हो जाओ, कहाँ पर? जन्नत के अंदर। वकुला मिनहा रगदन हैसु शिएतुमा, और जन्नत के अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं तुम सब खा सकते हो, इस्तेफादा कर सकते हो। वला तक्र ना इल्ला नहीं, वला तक्रबा, और तुम दोनों करीब ना होना, हाजिह शजरा, इस दरख्त से, अगर तुम करीब हो तो हो गए तो क्या होगा? फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमीन में से हो जाओगे अगर इसके करीब हो गए। तो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा इस वक्त जन्नत में हैं, और अजीब बात यह है कि अब बाज़ रावियों ने इमाम अहिमा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए इमाम, ये जो जन्नत जिसमें ये दोनों हस्तियां दाखिल हुईं, भेजा गया, ये आया जन्नत खुल्द थी, बहिश्त खुल्द थी? खुल्द का क्या मतलब? खालदा, हमेशगी है ना आयत में, हम फीहा खालिदून, हमेशा के लिए, या जन्नत में या जहन्नम में। अब ये आया वो बहिश्त थी जिसमें जिस जो बहिश्त खुल कहलाती है, यानी हज़रत आदम और हवा अब हमेशा के लिए चले गए जन्नत में, यानी वापस कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बिलाखिर जो बहिश्त खुल्द है ना, जिसमें जो इंसान उसमें चला गया, वो अब वापस बाहर नहीं आएगा, सही है ना। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, ये दुनियावी बहिश्त थी, दुनियावी बहिश्त थी, ठीक है? अगर आपको याद हो मैंने इशारा किया था, सही है, दुनिया के एक किसी कोने में ये बहिश्त थी, वहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अलैहिमा को भेजा गया, क्योंकि बिलाखिर मैंने उस दिन भी कहा था जन्नत की भी मरातिब और लेवल्स हैं। बिलाखिर अगर बहिश्त खुल में चले जाते हैं तो बहिश्त खुल की क्या खासियत है? वापस जाना तो होता है उसके अंदर, दाखिल तो है, दुखूल तो है, लेकिन खुरूज नहीं है, क्योंकि हम बाद में देखते हैं हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा को हिमा को बाद में निकाला जाएगा इस बहिश्त से। ये निकाला जाना इस बात की दलील है कि ये बहिश्त खुल्द नहीं है। ओके, बहिश्त के अंदर एक और खसूसियत है, वैसे ओवरऑल कुल्ली तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जन्नत के अंदर एक खसूसियत है, सूरह ताहा आय नंबर 118, आय नंबर 119 के अंदर ये आई है कि इन्नलका अल्ला तजू अफीहा वला तारा व अन्ना कला तजम उफीहा वला तवहा। जन्नत के अंदर ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना बरहनगी होती है, ना आफ्ताब जदगी होती है, धूप की तपिश नहीं लगती, ना भूख होती, ना प्यास, ना बरहनगी, ना कुछ। अलबत्त बहिश्त के अंदर खाना पीना है, खाना है, सही है, लेकिन भूख नहीं है। पानी पीना है, बेहतरीन शरबत आपको मिलेंगे, ये जो हम तो यहाँ पर पेप्सी कोक और रूह अफ़ज़ा जाम शीरी वगैरह पी पी के खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का शरबत कुछ और ही है, सही है। आप तो ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे आगो साहब आपने तो पिया है इसका मतलब वहाँ से कुछ, भाई मैंने नहीं पिया है। मैं तो खुद ये पढ़ के और सुन के और आपको सुना के खुद कैफ कर रहा हूँ कि और तलब इजाद हो रही है कि यार कभी इंशाल्लाह
वहाँ का शरबत तो दो फूल है।
नहीं, वहाँ के शरबत कुछ और, कभी इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। बस बहिश्त में क्या है, इन्नकला अल्ला तजुआ फीहा वला तारा व अन्नकला तत्तज़मा फीहा वला तवा। तपिश नहीं है वहाँ पर, कोई गर्माहट नहीं है वहाँ पर। एक मिसाल दूँ इसकी, सवाल नहीं करना, ठीक है। एक दो सेशंस ऐसे हो रहे हैं ना कि अगर आप सवाल करें और मैं रोक दूँ ना तो रुक जाना वहाँ पर, सही है, ओके। मैं आपको सवाल करने का हक आपसे नहीं छीन रहा, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स आने वाले हैं, ओके, खास तौर पे आप, ठीक है, अगर मैं रोक दूँ तो रिफंड नहीं करना सवाल, ओके। मिसाल के तौर पर जनीनी का दौरान जब एक बच्चा अपनी माँ की रहम में होता है, अपने रहम मादर होता है, तो आप देखें रहम मादर में भी इंसान, वो जो जनीन होता है, इसको जनीन कहते हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है रहम मादर में, उसको जनीन कहते हैं, रहम, रहम मादर, ठीक है। मैंने कहा ना सवाल अभी नहीं करना, ठीक है। तो क्या होता है, वो बच्चा अपने माँ के वजूद से गज़ा ले रहा होता है, खाना ले रहा होता है, लेकिन खसूसियत क्या होती है कि वो उस बच्चे को, उस जनीन को भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको गज़ा दी जा रही होती है, फिर भी वो गज़ा ले रहा होता है बेदून गुलस्नगी, बगैर किसी भूख के। अब जन्नत के अंदर भी एग्जैक्टली यही खसूसियत है कि भूख नहीं है लेकिन इंसान गज़ा खा रहा है और गज़ा और खाने की लज्जत भी अपने औच पे ले रहा है। या तो मैं और आप चिकन टिक्का और बिरयानी खा के समझते कि हमने बहुत बेहतरीन खाना खा लिया है, और हम समझते हैं कि यार आप देखो ईरानियों को, इराकियों को, ये तो बिरयानी से महरूम है, पाकिस्तानी खानों से महरूम है, सही है ना, ये लोग तो नहीं खाते ना बिरयानी वगैरह, ठीक है। और हम समझते हैं कि हम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खा रहे हैं, भाई ये तो सिर्फ दुनिया का खाना है जिसमें आपको मुझे लज्जत आ रही है, जन्नत का खाना क्या होगा, वो जन्नत जिसमें खुदा की निगाह है, जन्नतियों की जानिब, बहिश्तियों की तरफ खुदा देख रहा है, उस जन्नत की नेमतें कैसी नेमतें होंगी, कैसे मुमकिन है। अच्छा सवाल, अब एक और अमीक मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने आप से और आप सब से, कि जन्नत के अंदर हम कह तो रहे हैं कि भूख नहीं है, आया बिल्कुल भूख नहीं है, या भूख है और भूख का एहसास नहीं है, कौन सा बेहतर लगता है आपको? एहसास नहीं है, राइट, भूख है, भूख का एहसास नहीं है, हाँ,
मुझे दोनों का चीज़ें है,
दोनों हो सकता है, ओके।
ये हमारे है ना कि जो हदीसों में कि जो है क़यामत के दिन सबको जो ना जो जहन्नुम में जो जा रहे होते हैं, जो बहुत वो होते हैं, बड़े होते हैं, उनको प्यास लगती है और उनको बहुत ज्यादा आखिर में लेकर जाते हैं।
हाँ ओके ओके ठीक है,
तो इन्हें बिल्कुल प्यास नहीं है।
उस आयत को देखे ना, इन्ना लका अल्ला तजुअ फीहा वला तअरा, तो ठीक है समझ में आता है कि जन्नत में ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है, लेकिन शायद अमीकतर मतलब जो शायद इस आयत की तफसीर हो सकती है और जो बात असातीद ने की है, वो ये है कि जन्नत में भूख है लेकिन भूख का एहसास नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को भी भूख नहीं लग रही थी जन्नत में, अगरचे खुदा ने क्या सब देखो, मसलन आप फ़र्ज़ करें वो दोनों जन्नत में, और मसलन यहाँ पर खाना है, वहाँ खाना है, हर तरफ से जन्नत की नेमतें खाने पीने की सूरत में, हर किस्म के शरबत मौजूद हैं, हर किस्म के खाने मौजूद हैं, दर हकीकत इसका जवाब ये है कि अब आप देखें ना, इंसान जब बेहतरीन खाना देखता है तो मुँह में पानी आ रहा है। आता है ना सीख के, खास तौर पर इफ्तारी के मौके पे, सही, जब जलेबियाँ हों और आपकी मम्मी जो है पकौड़े पका रही हों और बेहतरीन शरबत और यू नो सब कुछ, ठीक है, तो मुंह में पानी आता है, भूख का ज़्यादा एहसास होता है बिलाखिर। दर हकीकत जवाब इस बात का ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हम अपना सलाम पेश करते हैं, दुरूद भेजते हैं इन दोनों हस्तियों की जानिब, दर हकीकत ये जब जन्नत में गए थे ना, तो खुदा के जज्बे में, खुदा की लज्जत में, ज़ात खुदावंद, खुदावंद रुबूबी की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि असलन उनको भूख का एहसास ही नहीं हुआ। असलन भूख का एहसास, प्यास का एहसास होता ही नहीं था। गर्क थे खुदावंद मुताल की ज़ात में, खुदावंद मुताल के जज्बे में। असलन बदन की तरफ तवज्जो नहीं थी। बदन की तरफ अगर तवज्जो हो जाए तो भूख लगती है ना। कितने लोग हैं जिनको रोज़ा लगता है, जिन खास तौर पर उन ममालिक में, मतलब यहाँ भी आप देखें 15-16 घंटे रोज़ा है, सही है, और खुसूसन अगर ताबिस्तान हो, गर्मी का सीज़न हो, अभी तो फिर भी बेहतर मौसम है भाई, लेकिन अगर जून जुलाई का मौसम हो और 18 घंटे का रोज़ा हो तो क्या होगा, जब 3 बजेंगे 4 बजेंगे तो क्या होगा, भूख का एहसास होगा। लेकिन उलमा को देखें आप, उलमा को, मेरा एक उस्ताद है, इंशाल्लाह खुदा उनको लंबी उम्र दें, हमने एक दिन, मुझे मौका मिल गया था कि उनके माह रमज़ान के बाद जुलूस को मैं अटेंड करूं। रमज़ान के अंदर, जब 2 या 3 साल पहले की बात है, जब रोज़ा 17 घंटे और यू जून के अंदर था, वो उस्ताद रोज़े की हालत में 4-4 घंटे दर्स देता था, 4 घंटे, और जो उनका आखिरी दर्स था ना, आखिरी तकरीबन 12 दर्स थे, और जो आखिरी दर्स था ना वो तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का था। यानी उन्होंने तकरीबन 4 बजे, नहीं 5 बजे वो दर्स शुरू किया, इफ्तारी तक वो दर्स ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा इफ्तारी के बाद फ़ौरन आते हैं वापस, इफ्तारी की नमाज़ पढ़ी और दर्स, इफ्तारी के बाद 2 घंटे और दर्स दिया उन्होंने। यानी आप देखें उलमा जो होते हैं, उलमा क्यों इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, क्यों इनके अंदर इतनी ताकत होती है, आप देखें इल्मी काम करें, किताबें पढ़ रहे हैं और क्या होता है तहकीक कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं 5-5 घंटे। और एक और हदीस में आपके सामने पेश की थी, वो हदीस याद है आपको कि इल्म कब हासिल होता है, भूखे पेट में, नहीं कि भूखे पेट के अंदर इल्म जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, जब इंसान का पेट खाली हो तब इल्म इंसान के वजूद में आता है। क्यों? क्योंकि अल इल्मो नूर, भरे हुए पेट में इल्म नहीं आता, यानी भरे हुए, जिसका पेट भरा हुआ उसका, इसके वजूद में इल्म दाखिल नहीं होता इतनी आसानी से। बस क्या होगा, क्यों उलमा के अंदर इतनी एनर्जी होती, ताकत होती, बस क्योंकि वो रोजे की हालत में उनको बदन की तरफ तवज्जो नहीं होती, चूंकि बदन की तरफ तवज्जो नहीं होती और प्रैक्टिस करते हैं, तमरीन करते हैं कि बदन की तरफ तवज्जो ना हो, लिहाजा 5-5 घंटे दर्स देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे उलमाएँ जो रमज़ान को बेउनवाने फुर्सत देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, किताब मुतालिया तहकीक दर्स वगैरह, ऐसे ही है ना, ठीक है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत के अंदर, चूँकि खुदावंद मुताल की ज़ात में इस कदर गर्क थे, खुदा के जज्बे में इस कदर गर्क थे, लिहाजा उनको बदन की तरफ तवज्जो नहीं थी। चूँकि बदन की तरफ तवज्जो नहीं थी, लिहाजा उनको ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना कुछ, समझ में आ रही है, यानी बदनी अहकाम की तरफ चूंकि तवज्जो नहीं थी, लिहाजा बदन अगर मुश्किल में भी होगा ना तो लिहाजा क्या होगा, उनको फील नहीं हो रहा होगा, उनको एहसास नहीं होगा अगर उनका बदन मुश्किल में भी हो। बस यहां तक बात क्लियर हो कि बदन की तरफ तवज्जो नहीं थी। अब यहां पर कोई सवाल है तो करें जी।
आपने कहा था ना कि हजरत आदम और हजरत हवा बेहेश के
डाले
खुलद में नहीं थे, बेहेश
खुल्द।
के खुलद में नहीं थे, वो एक बेहेश जो दुनिया की, दुनिया में से एक बेहेश थे, उनमें थे। तो फिर हमारे पास सुना कि जो हजरत आदम और हजरत हवा जो उन्होंने जो मासियत की थी उसके बाद उनको बेहेश इन्हें
से निकाला गया।
निकाला गया और दुनिया में उस वक्त भेजा गया, जैसा आपने शुरू के जला साहब ने बताया कि उनका मकाम उन्हें तनजल हुआ था। तो मैंने अगर वो
अब
दुनिया में
दुनिया में थे तो
भी,
जमीन पे भी थे, है ना।
हाँ तो कैसी है दुनिया से दुनिया भेजा।
अब इंशाल्लाह जब हुबूत आदम के किस्से में आएंगे ना, जब जन्नत से उसको निकाला जाएगा एक दो सेशंस के बाद, तो उसमें आपका शायद जवाब आ जाए। ओके वेट कर सकते हैं आप एक दो जलसे और एक दो सेशंस के बाद, ठीक है। वो हुबूत आदम के किस्से में देखते हैं, सही है ना।
मुझे एक सवाल ये है
हाँ,
तुमसे,
अलबत्ता ये देखना चाहिए हमें कि बिलाकर एक है दुनिया। एक मैं आप एक सवाल लिखें, इसके बारे में आप सोच के आए। ओके एक सवाल लिखें, आप भी सोच के हैं, ठीक है। डिस्कस डिस्कस करें कि दुनिया और ज़मीन में क्या फ़र्क है। मैंने कहा लिखो ना, अब लिखो यार, आप भी सोचें। यूट्यूब वाले जो हैं, शेयर टीवी वाले जो हैं, हतमन आप भी मुझे बताएं कि दुनिया और ज़मीन में क्या फ़र्क है। सोचें ना, फौरन मत सोचे कि हमें जवाब आता है। ओके दुनिया और ज़मीन में क्या फ़र्क है, आपका एक सवाल है, इसके बाद मैं अपना दोबारा रिज्यूम करता हूँ जी।
इतना उस पे वो नहीं है यानी
अगर मजबूत नहीं तो
वो
बाद में कर सकते, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब खुदावंद मुताल ने क्या हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह को के, कहाँ चला गया भाई, वाले एक मिनट, शजरे ममनुआ वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त, हाज़िही खुदा कह रहा है, हाज़िही इस दरख्त की तरफ करीब मत जाना। ओके अब देखते हैं भाई ये क्या माजरा है, खुदा ने मना किया है। देखिए यहाँ पर अरबिक में क्या आया लफ्ज़ कुरान के अंदर, ला तक़रबा, मत जाना। अगर मैं आपको कहूँ मतलब आपके बाबा आपको कहें, और मतलब आप तमरीन के एतबार से अगर मतलब आपको रोज़ा रखा है, खुदा ने क्या कहा है, जब इंसान रोज़ा रखे तो किचन की तरफ मत जाना, खाने की तरफ मत जाना, जब इंसान का रोज़ा होता है। तो आपको इससे क्या बात समझ में आती है कि आया खुदा आपको कह रहा है कि अगर चले भी जाओ तो कोई मसला नहीं है,
नहीं
ऐसा कह रहा है खुदा, यानी अगर इंसान करे ही काम।
जाने
अरे किचन की तरफ यानी किचन से खाना पीना है, यानी इंसान जब रोजे की हालत में होता है तो खाने पीने की तरफ जाता है, नहीं ना, खाना मुंह में डालता है, खाना मुंह में डालेगा तो रोजा बातिल हो जाएगा। तो अगर खुदा अगर कहता है तमाम रोजेदारों को कि रोजे की हालत में तुलू से लेकर गुरूब तक मगरिब तक खाने पीने की तरफ मत जाना, तो आपको इससे क्या समझ में आता है, आया खुदा ये कहना चाह रहा है कि अगर चले भी जाओ तो मसला, अगर एक लुकमा ले भी लो ना तो मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, गर्मी का मौसम है, मेहरबान हूँ, रहमान रहीम हूँ, अगर प्यास लगती है घूट पी लेना कोई मुश्किल नहीं। आया खुदा ऐसा कह रहे हैं, नहीं खुदा क्या कहना चाह रहे, बस मत जाना तो मत जाना, नहीं जाना मेरा हुक्म है, वाजिब है कि नहीं जाना। इसको अरबी में पता है क्या कहते हैं, बस मैं कहता हूँ खाना खाओ, खाना खाओ, यानी इसको अरबिक ग्रामर में
ऑर्डर
कहते हैं आम्र, खुदा का आम्र है, क्या है,
दस्तूर
हमजा हमजा मीम रे आम्र, मतलब खाना खाओ।
दस्तूर
ओके अब अगर खुदा मना करे किसी चीज से वो भी तो अम्र है ना, लेकिन उसको हम क्या कहें, मतलब कहते हैं नहीं
अमले
खाओ,
नहीं
इसको कहते हैं नहीं, अम्र नहीं कहते, उसको कहते हैं नहीं, बस एक है
नहीं
आम्र और एक है नहीं। अगर खुदा कह रहे खाओ वाजिब है, मतलब खुदा कहते हैं अकीम उस्सलात, नमाज कायम करो वाजिब है, खुदा कहते हैं ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस शजरा के नज़दीक मत
जाओ
जाना, यानी नहीं कह रहा है यहाँ पर, यानी ये भी वाजिब है ना, इस नहीं के ऊपर अमल करें हम। ओके क्लियर, खुदा यहाँ पर क्या, अब नहीं का तकाजा क्या है कि आदम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा के लिए ज़रूरी है कि उस दरख्त के नज़दीक ना जाएं, अगर चले गए तो हराम काम किया। अल्लाह अकबर, आप हज़रत आदम के लिए आप कह रहे हैं उन्होंने हराम काम क्या किया उन्होंने। ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे उलमा मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब मना किया खुदा ने और वो गए शैतान के वसवसे, हम देखेंगे शैतान ने यहाँ क्या किरदार अदा किया है, शैतान के वसवसे में आके दोनों ने वो गए दरख्त के नज़दीक गए और उन्होंने खाया, अब खाया या चखा ये बाद में देखते हो, ठीक है, बिलाखे वो गए।
कौन
हाँ
सा मीवा था
एक मिनट, बात ये कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, कौन सा मीवा, वो इमाम से भी किसी ने ये सवाल पूछा था कि कौन सा मीवा था, कौन सा फ्रूट था, वो बाद में देखते हैं। ओके क्या बात हो रही थी, हाँ तो यहाँ पर क्या किया, उलबाज उलमा कहते हैं कि आदम और हव्वा ने गुनाह किया, जबकि मैं और आप इस बात के ये हमारे मुसल्लम अकायद में से कि नबी तो मासूम होता है, ऐसा है नहीं, और मासूम कभी गुनाह
नहीं
नहीं करता। तो ये क्या किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर, उस दरख्त के नजदीक जाके? आया ये गुनाह कहलाएगा नहीं कहलाएगा? जवाब दे दूं मैं, जवाब दे दूं, जवाब दे दूं भाई। ओके, जवाब इसका ये है कि, जवाब इसका ये है कि देखें, ये जो खुदा का हुक्म है ना, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ अगर इस्तेताअत हो, ताकत हो आपके अंदर, और मसलन रोज़े की हालत में फ़लाँ काम ना करो, ओके ये सब है ना, इसको क्या कहते हैं हम फिक की इस्तेलाह में, क्या कहते हैं? अहकाम तकलीफ़ी। क्या कहते हैं? तकलीफ़ी, यानी मेरे ऊपर तकलीफ़ है। हर मुसलमान जो बालिग हो जाता है 15 साल या 9 साल की उम्र में, उसके ऊपर कुछ तकालीफ़ आयद होती हैं। तकालीफ़ यानी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अब खुदा के जितने भी वाजिब अहकाम हैं, और के वो ये वाजिब अहकाम मुझे बजा लाने हैं, और खुदा ने जिन हराम कामों से मुझे रोका है, इन तमाम दस्तूरात और अहकाम दीनी से मुझे के ऊपर मुझे क्या करना है? अमल करना है। इसको हम क्या कहते हैं? अहकाम तकलीफ़ी कहते हैं, राइट? ठीक है, अब सवाल ये कि अहकाम तकलीफ़ी कब आयद होते हैं इंसान के ऊपर? जब इंसान दुनिया में आता है, पैदा होता है। अब जब इंसान 5 साल का होता है, मसलन मेरा बेटा 5 साल का है, तो आया उसके ऊपर कोई तकलीफ है?
नहीं।
ये तकलीफ उर्दू वाली तकलीफ नहीं है। उर्दू में तकलीफ किसको कहते हैं पता है? मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ। नहीं, ये तकलीफ, ओके, ये तकलीफ का लफ्ज़ दर हकीकत अरबिक और फारसी में जो इस्तेमाल होता है वो फिकही इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। सही है? यानी तकलीफ का क्या मतलब? यानी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, ये इसको हम कहते हैं तकलीफ। खुदा ने कहा शराब नहीं पियो, इसको कहते हैं तकलीफ। ओके, जब 7 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, उसके ऊपर कोई तकलीफ होती है, उसके लिए वाजिब है नमाज पढ़े? नहीं। लेकिन जब यही मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो क्या होगा? इसके ऊपर तकालीफ इलाही और दस्तूरात इलाही इसके ऊपर, इसके दोष के ऊपर आयद हो जाएंगी। अब इसके लिए वाजिब अज अव्वल रोज़े बुलूग, जिस दिन वो बालिग हो गया ना, उसी दिन से नमाज वाजिब है। और अगर उसने पहले दिन ऑफ बुलूग उसने अगर नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या होगा पता है? कज़ा हो जाएगी उसकी नमाज, और उसको गुनाह मिलेगा। अगर उसने जानबूझ कर मसलन कज़ा की है। अच्छा, हज़रत आदम अलैह, अच्छा बात क्या हो रही है? ज़मीन पर जब ये बच्चा मुतवल्लिद होता है, ज़मीन में आता है, ज़मीन पर आता है, ओके, 15 साल का होता है, तब बालिग होता है, तब ये तकालीफ आयद होती हैं। यानी तकालीफ इलाही कब आयद होती हैं? ज़मीन में आने के बाद। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा अभी तक ज़मीन पर आए नहीं आए? मैंने कहा क्या, दुनिया और जमीन में फर्क मुझे बाद में बताना।
दुनिया और जमीन में कोई फर्क नहीं।
हजरत आदम और हजरत हव्वा अभी तक जमीन पर नहीं आए हैं। अब दुनिया क्या है? मुमकिन है आज के सेशन में आ जाए इसका, ओके, मुमकिन है। अभी मैं आपको 2 मिनट में जवाब दे भी दूं, थोड़ा सा सब्र करो, ओके। हजरत आदम अगरचे दुनियावी जन्नत में है, लेकिन जमीन में नहीं आए। इसी वजह से उलमा फर्क बयान करते हैं दुनिया और जमीन में। ओके, मैं बताता हूँ आपको, देखिए, इन्नल्लाह मअ सबिरीन। अच्छा, लिहाजा हम यहाँ क्या नतीजा लेंगे? चूंकि तकलीफ जमीन पर होती है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने कोई गुनाह अंजाम दिया, मैंने नमाज जान बूझ के खुदा ना खासा नहीं पढ़ी, तो मुझे गुनाह मिलेगा? कजा तो है, गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके, ये कब होगा? ये गुनाह कब मेरे ऊपर, ये सवाब, ये गुनाह, ये सब कब होता है? ज़मीन में आने के बाद। लेकिन ज़मीन में आने से पहले सवाब, गुनाह, ये सब माना नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं है ज़मीन से, ज़मीन में आने से पहले। हज़रत आदम, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा अभी तक ज़मीन पर नहीं आए हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बस जब उन्होंने दरख्त के करीब, दरख्त के नज़दीक गए, उस फल को चखा उन्होंने, तो ये उन्होंने गुनाह अंजाम नहीं दिया उन्होंने, ठीक है?
तो गुनाह नहीं क्या कहला जाएगा?
अब यहाँ पर मैंने कहा ना, तफसील बहुत है। बाज़ उलमा कहते हैं तर्क औला है, मतलब खुदा तर्क औला ये होता कि भाई एक खुदा ने आपको एक काम दिया है, ओके, कि इस काम को बजा लाओ, ओके, मिसाल के तौर एक मुस्तहब काम अंजाम दिया है, काम का दस्तूर दिया, ये मुस्तहब काम हतमन आगे हानी, इसको बजा लाओ, ताकीद के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने ये काम انجام نہیں دیا اور اس کے نچلے مرتبے کا مستحب انجام دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اولا کو ترک کیا، اس اولا کام کو جس کی خدا نے تاکید کی تھی.
قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ جنہیں خدا نے صاف صاف کہہ دیا کہ مت کرو یہ کام، تو پھر
مت کرو. پس لیکن یہ زمین، دیکھیں فرق ہے نا، احکام امر و نہی میں.
تو شیطان کو بھی تو خدا نے امر کیا تھا کہ جب تم سجدہ کرو، تو وہ اس سب بھی تو زمین پہ نہیں تھے.
خوب، تو سجدہ خدا نے، شیطان نے کو کیا کہا؟ خدا نے سجدہ نہیں کرو،
سجدہ کرو،
سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا، خوب وہ زمین پر نہیں تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ اس نے فقط خدا کی بات نہیں مانی. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے شاید دو سیشن یا کل کہا تھا کہ نہ فقط اس نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. یہ کیا نا شیطان نے، جو سبب بنا استکباریت کا. چلو اگر اس نے یہ، اگر اس نے شاید یہ جواب برے رویہ اختیار نہ کیا ہوتا، نہیں کہا ہوتا اس نے یہ جملہ، یہ جسارت، عظیم جسارت نہ دکھائی ہوتی، شاید ممکن ہے اس کو ممکن ہے دوبارہ مہلت مل جاتی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. لیکن یہ تو اس نے سجدہ نیا نہ کیا، بلکہ بدتر جواب دیا، میں ہرگز سجدہ نہیں، تو جو کر لے بھائی میں سجدہ نہیں کروں گا. اوکے، لیکن حضرت آدم نے یہ کیا نہیں. بعد میں ہم دیکھیں گے حضرت آدم پشیمان ہوئے جب ان کو زمین پہ بھیجا گیا. دیکھیں زمین، ان کو اس جنت سے نکالا گیا، نکال کر زمین پہ بھیجا، بعد میں وہ پشیمان ہوتے، 40 سال تک توبہ کرتے ہیں. ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو، کس تفصیل دیکھیں گے حضرت آدم کی توبہ کیسے کی، انہوں نے توبہ کون سے جملات اور کلمات استعمال کیے توبہ کے. ٹھیک ہے، دیکھیں گے بعد میں. بس یہ بات یہاں پر کلیئر. اب یہ ترک اولا والی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فی الحال ہم ڈیسائیڈ اور تصمیم گیری نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا. گناہ کہاں معنی بنتا ہے؟ جب انسان زمین پر آ جائے اور جب بالغ ہو. اوکے اوکے، اب یہ درخت کیا تھا؟ یہ منتظر بھائی کا سوال، درخت کیا تھا یہ؟ اس کے مختلف نظریے پائے جاتے ہیں، اقوال ہیں. آیا گندم کا درخت تھا؟ آیا یہ انگور کا درخت تھا؟ کیا تھا یہ؟ جو بھی ہو، آیا اس، اگر میں آپ کو جواب دے بھی دوں، اگر امام کی روایت بھی بھائی مہدی بھائی یہ انگور کا درخت تھا، تو اس سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کی تربیت میں فرق آئے گا؟ اے کاش بس میں بھی وہ انگور کا درخت کھا لیتا. زیادہ تر یہی ہوتا نا، زیادہ تر یہ ہوگا کہ بھائی آپ بھی ایک درخت اپنے گھر میں بنا لیں گے اور اس میں انگور ڈال لیں گے. اوکے،
لیکن انگور کھانا، اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ درخت سے کھانا ہمارے لیے وہ نہیں ہوگا.
کیا
یہ خدا نے حضرت آدم کو منع کیا ہے؟
بلا کے حضرت آدم نے چکھا نا اس درخت سے بلا کے. اوکے، فلم مذاق اور شجرا چکھا ہونا. دیکھیں قرآن کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں؟ ٹائم پاس کی تو خدا نہ خاصا کتاب نہیں ہے نا، ٹائم پاس کرنا، وقت گزارنے کی تو کتاب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اوقات فراغت کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے اندر بس قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے نا، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کی ہدایت میں کام آئے گی وہ اس میں ذکر کیا ہے. اگر گندم کا درخت ہوتا اور گندم یا انگور کا ہوتا اور اس میں ہماری ہدایت ہوتی، خدا اس کا ذکر کر دیتا کسی آیت میں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، خدا نے بلایا نا، انی انا اللہ، اے موسیٰ تو آج. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کہاں تھے اس سے پہلے؟ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ. جیسے بیوی بچوں کے ساتھ آئے راستے میں تھے، وہ راستہ گم کر گئے. صحیح ہے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں کوئی چراغ اور کوئی آگ آتش میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. پھر ان کو پہاڑ پہ نظر آیا کچھ کہ آگ جل رہی، آتش، تو وہ جاتے ہیں وہاں پر. قرآن یہ پورا قصہ بیان کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں پہاڑ پر، پہاڑ پہ خدا سے ان کا مکالمہ شروع ہوتا ہے. کرتے 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 اصلاً قرآن یہ نہیں بتاتا کہ حضرت موسیٰ کے بیوی بچوں کا کیا بنا.
کیا؟
قرآن نہیں بتاتا کہ ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوا. بعد میں حضرت موسیٰ آئے نیچے، بیوی بچوں کو سلام کیا، کھانا کھایا، یہ سب قرآن نے نہیں بتایا. وہ آتے ہیں کوہ طور سے نیچے اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے چلے جاتے، قرآن یہ بتاتا ہے. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اگر، کیوں نہیں بتایا قرآن نے ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس میں ہدایت نہیں تھی ہمارے لیے کوئی، رائٹ؟ تو اس میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے. اس سے بہتر کوئی دلیل چاہیے مجھ سے آپ کو؟ جو بھی ہو، چاہے وہ अंगूर का हो चाहे वो गंदम का हो। दर हकीकत, अब उस सवाल का जवाब है जो मैंने आपको लिखवाया। दर हकीकत ये जो दरख्त था ना, ये दुनिया का दरख्त था। यानी क्या दुनिया का दरख्त था? दुनिया का दरख्त था, ये जमीन का दरख्त नहीं था। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं, असातीद फरमाते हैं, अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दुनिया का दरख्त होता, लेकिन ताल्लुक में दुनिया का दरख्त था, तवज्जो में बदन का दरख्त था ये। अब
हाँ
समझ में आया जमीन और दुनिया में क्या फर्क है? दुनिया यानी तवज्जो में बदन,
अर्जुन
जमीन, ये जो जमीन आप देख रहे हैं यहां पर, इस जमीन को कहते हैं, ओके, इस जमीन के अंदर दुनिया है, ओके। जब आप,
ये दुनिया के अंदर जमीन है।
अब आप फिलहाल जो भी फर्ज कर लें, ओके, फिलहाल इस पर मैं डिस्कस नहीं करते, जब इंसान इस, कहते हैं ना, दुनिया से जाएगा मरेगा, तो दुनिया से जाएगा और जमीन से भी जाएगा। यानी जमीन क्या? आलम है मादा, ये जमीन है, दुनिया इसके अंदर मौजूद है। दुनिया यानी क्या? तवज्जो बे बदन। बदन कहाँ होता है? मादा में होता? नहीं होता, मादा में होता है ना, मैटर में होता है, जिस्म में होता है। और जमीन क्या? जिस्म है या नहीं है? बस दुनिया कहाँ होनी चाहिए? बरजख में होनी चाहिए? नहीं,
अच्छा
जमीन में होनी
वो
चाहिए।
वाला जन्नत का है, वहां पे
सही
जाना
है,
है।
एक मिनट ना, सब्र करो सब्र करो, सवाल पे कंट्रोल करना दोबारा, ठीक है। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने कहा ला तक़रब हाज़िहि शजरा, यानी इस तवज्जो बे बदन के तरफ करीब ना होना, इस दरख्त की तरफ जो कि दुनिया से ताल्लुक का दरख्त है, मत होना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के अंदर किस कदर दुनिया की मजम्मत की है। अब बाज लोग क्या समझते हैं पता है इस मुजम्मत से इमाम अली की? इमाम अली तो कहते हैं दुनिया से तलाक़ें ले लो और इबादतों में लग जाओ और बीवी बच्चों को टाइम ना दो, खाना पीना छोड़ दो, 24 घंटे रोजे रखो। इमाम अली आया यहाँ, रुहबानियत। बाज लोग रुहबानियत को क्या समझते हैं? गार में जाके पना लो, इबादतें करते रहो, बीवी बच्चों के पास ना जाओ, कैरम ना खेलो, क्रिकेट ना खेलो, ना कुछ। नहीं, इमाम अली ने असल ये नहीं कहा। इमाम अली जब दुनिया की मजम्मत कर रहे, यानी तवज्जो बे बदन की तरफ आपको होशियार दिला रहे कि भाई अहकाम ए बदन की तरफ तवज्जो कम करो और अहकाम ए रूह के ऊपर भी तवज्जो करो, यानी वही एतदाल। अहकाम ए बदन को, यानी बदन को रूह के ताबे करो ना, रूह को बदन के ताबे करो। अगरचे बीवी बच्चों को टाइम दो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जो करना है, ये कोई मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, इमाम फरमा रहे, लेकिन
आपने जो पिछले रमजान में जो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें भी आपने
वो भी
बताया।
आपने सुना है। अजब, मन के खुशहाल से मन इन कदर बीनंदे हो दौरान जी।
उसमें भी आपने बताया था ना कि जब हजरत रसूल खुदा को जो है हुक्म मिला था कि आप जो है 40 40 डेज के लिए जो है ना
बाय जी,
कूहे टूर पे चले जाएं,
उस
और
गाय
हजरत
हिरा
का खदीजा को बताया गया वो चले गए थे, तो उन्होंने
में,
किसी को भेजा था हजरत खदीजा को बताने के लिए।
कितनी अहम बात है, कितनी है। अब बाज लोग पता है दीनदार होते हैं, मैंने यही बात वहां कही थी, जो इस कदर अपनी दीनी फ़ालियतों में गर्क होते हैं कि अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते।
तो लेकिन हजरत जो ईसा के जो वो थे असावे कह रही थे ना,
हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम,
हाँ वो 3 से 4 दिन, तो वो उनमें से एक जो आले जना मौसमिलियन थे वो तो
मैक्सिमिलियन वाले कहाँ
3 से 4 दिन के अंदर ही थे,
थे
अंदर घर के अंदर थे ना, वो भी
यार?
अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गए थे।
यार वो फिल्म है यार, आप हकीकत को देखो ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल थी, 40 दिन के लिए गारे हिरा में गए, अम्मार अम्मार को भेजा, राइट? मैंने शायद अम्मार यासिर का शायद नाम लिया या किसी सहाबी का नाम लिया, हजरत अम्मार या किसी सहाबी को खत लिखकर भेजा कि ये खत हजरत खदीजा को, यानी मेरी बीवी को पहुँचाना और उससे कहना। उस खत में क्या लिखा है नबी अकरम ने? कि ए खदीजा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी फ़िक्र में नहीं हूँ, सही है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन चूंकि खुदा का दस्तूर है तो मैं यहाँ पर 40 दिन के लिए आया हूँ। तो जब नबी अकरम अपने बीवी बच्चों की फिक्र में हैं, तो असहाबे कहफ, मैक्सिमिलियन और सब तमाम अम्बिया और औलिया अपने बीवी बच्चों की फिक्र में होते हैं, सही है। लेकिन ठीक है, मुमकिन है यहाँ पर कोई सवाल करें, यहाँ पर एक मिनट, मुमकिन है यहाँ पर कोई सवाल करें कि आगा साहब, खुदा ने क्या कहा? ला तकरब हाज़िहि शजरा, और आपने क्या कहा कि ये दरख्त क्या था? तवज्जो बे बदन का दरख्त था। खूब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ से जन्नत के अंदर खुदा के जज्बे में गर्क थे, उनको वो अपने बदन की तरफ मुतवज्जे नहीं थे। दूसरी तरफ से ये खुदा का बरनामा था। क्या बरनामा था? बरनामा यानी खुदा का नक्शा था। नक्शा यानी खुदा का, खुदा की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी? कि हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजना है। बिलाखिर हज़रत आदम को ज़मीन पर आना है या नहीं आना है, ताकि अपनी नबूवत का आगाज़ कर सकें और ये नबूवत 1,24,000 अंबिया का सिलसिला शुरू हो सके। ऐसा है या नहीं है? ज़मीन पर आना था। लिहाजा उलमा यहाँ ये फरमाते हैं, अल्लामा ये फरमाते हैं, जब मैं अल्लामा कहूँ ना तो अल्लामा से क्या मुराद है? अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर मीज़ान। वो यही फरमाते हैं कि भाई एक तरफ से तवज्जो बे बदन भी तो ज़रूरी थी ना। जब इंसान ज़मीन पर आएगा तो उसके लिए बदन होना ज़रूरी है या नहीं है? सही है। अगर मैं ज़मीन पर आ जाऊँ और मेरी बदन, मुझे अपने बदन की तरफ तवज्जो ना हो, तो नतीजे में क्या होगा? मैं ना खाना खाऊँगा ना कुछ खाऊँगा, लिहाजा क्या होगा? मेरी हयात मुअत्तल हो जाएगी। एक तरफ से बात बिल्कुल बात सही है, अगरचे खुदा ने मना किया कि आप इस दरख्त के पीछे मत जाओ, अगर बदन, अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो क्या होगा? बस ए आदम, अगर इस दरख्त के पास चले गए और चख लिया इस दरख्त के फल को तो क्या होगा? तवज्जो बे बदन मुहक्कक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी हजरत आदम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह अपने बदन की जानेब मुतवज्जे हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से हज़रत आदम को ज़मीन पर भी भेजना ताकि नबूवत का आगाज़ हो सके, और ज़मीन पर आने के लिए बदन की तरफ तवज्जो भी ज़रूरी है, और एक और लिहाज से बदन की तरफ तवज्जो ज़रूरी। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि खुदावंद मुतआल ने वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, हमने अपनी रूह को फूका कहाँ पर? बदन के अंदर। रूह को किस चारचूब में, किस फ्रेम में डाला है? बदन के अंदर डाला है।
जब इंसान जो है मर जाएगा तो उसकी रूह तो निकल जाएगी,
बदन से खारिज हो जाएगी ना, मुश्किल नहीं है? मुतवज्जे हसन,
वो तो निकल जाएगी, तो फिर यानी क्या होगा, यानी फिर तो वो उस चार
लेकिन जमीन पे आने के लिए क्या करना है? जमीन चूंकि मादा है तो फकत रूह को तो नहीं भेजा जा सकता बेतनहाई, रूह को बदन में डालकर भेजा जाना जरूरी है। बस नतीजा, नतीजा इसके बाद हम गुफ्तगू एंड कर रहे हैं। नतीजा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बदन की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है, और बदन की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए खुदा ने इस जन्नत में ऐसा दरख्त रखा है कि अगर हज़रत आदम ने उस दरख्त से तनावुल कर लिया तो तवज्जो बे बदन मुहक्कक हो जाएगी, और खुदा यही चाहता है कि ये हो। अब ये क्यों खुदा चाहता, अब ये क्यों खुदा चाहता है कि ऐसा हो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाहुम्मा सल्लि